स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 13 दिसंबर और दिन शुक्रवार। एग्जिट पोल के मुताबिक ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी को मिल सकता है पूर्ण बहुमत।
This has been a hard-fought general election campaign at a cold time of the year as well.
बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत दौरा किया रद्द।
आज की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार है, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, बिल्कुल नहीं।
मुगल बादशाह अकबर के जन्म स्थल उमरकोट पर एक खास रिपोर्ट।
ओ कोटन में किया गुजारा
बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सृष्टि श्रीवास्तव से। ब्रिटेन के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई दिख रही है। वोटिंग खत्म होते ही बीबीसी, स्काई और आईटीवी ने एक एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी को 2017 के चुनावी नतीजों के मुकाबले 50 सीटों का फायदा होते हुए दिख रहा है। गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वोट डाले गए। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 326 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता मार्क फ्रैंकोइस ने बीबीसी से बताया कि अगर ये एग्जिट पोल सही हैं, तो ये लेबर पार्टी की बड़ी असफलता को दिखाता है।
The Labour Party presented a Marxist option and the British people have resoundingly...
लेबर पार्टी ने एक मार्क्सवादी विकल्प प्रस्तुत किया था और ब्रिटेन के लोगों ने इसे फिर से खारिज कर दिया है। इसके बाद बहुत सारे सर्वेक्षण कराए जाएंगे कि लोगों ने जिस तरह से वोट किया उसके पीछे के कारण क्या थे, लेकिन मुझे साफ लगता है कि इसके पीछे के दो कारण थे। एक तो ब्रेग्जिट और दूसरा ये कि जर्मी कार्बन एक जहरीले व्यक्ति हैं। ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता मार्क फ्रैंकोइस के शब्द। म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों से अपने देश की सेना के खिलाफ नरसंहार के आरोपों को खारिज करने की अपील की है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पर 2 साल पहले रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या, बलात्कार और निर्वासन के मामले में चुप रहने और कोई भी कदम न उठाने के आरोप हैं। 3 दिनों की सुनवाई के बाद अपनी टिप्पणी में सूची ने सेना की कार्रवाई को आतंकवादियों के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि ये मामला म्यांमार के समुदायों के बीच विश्वास और सामंजस्य को कमजोर कर सकता है।
Steps that generate suspicion, so doubts.
ये संदेह पैदा करने वाले और समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने वाले कदम हैं, जो समुदाय अभी अभी विश्वास की एक नाजुक नींव बनाने की प्रक्रिया में हैं। उनके लिए ये कदम सुलह की संभावना को और भी कमजोर करते हैं। अराकन सेना और म्यांमार की रक्षा सेना के बीच चल रहे आंतरिक सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करना हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तरी रखाइन में 2016 और 2017 के आंतरिक सशस्त्र संघर्ष को भी फिर से बढ़ने से रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये थे म्यांमार की नेता आंग सान सूची के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब नागरिकता संशोधन बिल कानून बन गया है। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग से जुड़े औपचारिक आरोपों पर तीखी बहस कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नियंत्रित इस समिति द्वारा 2 औपचारिक आरोपों को मंजूरी देने की उम्मीद है, जो अगले सप्ताह सदन में वोटिंग के लिए फिर भेजे जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप पर लगे सत्ता के दुरुपयोग के आरोप को खारिज नहीं कर पाई और उन्होंने डेमोक्रेट्स पर अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। डेमोक्रेट्स ने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी अमरीकी लोगों से ज्यादा ट्रंप के प्रति वफादारी दिखाते हैं। न्यूजीलैंड की सेना सोमवार को ज्वालामुखी विस्फोट में मारे गए 8 लोगों के शव को वापस लाने के लिए एक जोखिम भरा अभियान चला रही है। व्हाइट आइलैंड से सेना ने 6 शवों को एयरलिफ्ट किया है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर अमरीकी सरकार ने निकारागुआ के राष्ट्रपति के बेटे रफाल ओर्टेगा पर प्रतिबंध लगाए हैं। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 13 तारीख और दिन है शुक्रवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रिटेन के चुनाव से। ब्रिटेन के आम चुनाव में इस वक्त वोटों की गिनती जारी है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी को 368 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं लेबर पार्टी 1935 के बाद से अपना सबसे खराब प्रदर्शन कर सकती है। उसे 71 सीटों का घाटा हो सकता है और उसकी सीटें 200 से भी कम हो सकती हैं। ब्रिटेन की संसद में 650 सदस्य होते हैं। एग्जिट पोल के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम लोग दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र में रहते हैं। वहीं लेबर पार्टी के शैडो चांसलर जॉन मैकडोनल्ड ने कहा कि अगर ये एग्जिट पोल सही है तो ये बहुत ही निराशाजनक होगा। एग्जिट पोल आते ही ट्विटर पर कॉर्बिन आउट भी ट्रेंड करने लगा। उधर गृहमंत्री प्रीति पटेल ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
This has been a hard-fought general election campaign at a cold time of the year as well.
ये बहुत ही मुश्किल भरा चुनाव प्रचार था, वो भी सर्दी के इस मौसम में। हम लोग सड़कों पर उतरकर पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ये डेडलॉक तोड़ना होगा जिसने पिछले 3 साल से संसद को जकड़ रखा है। आगे बढ़ने के लिए, ब्रेग्जिट को लागू करने के लिए हमें पूर्ण बहुमत वाली कंजर्वेटिव सरकार चाहिए। तो सीधे चलते हैं लंदन, जहां टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। जुबैर, आप ये बताएं कि इस एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है?
मेरे ख्याल से एग्जिट पोल जो 2017 और 2015 में किए गए थे उसमें काफी सही निकले थे, और इस बार भी जो लोग हमें बता रहे हैं कि एग्जिट पोल किए गए हैं, अब तक जो नतीजे आए हैं, अब तक 11 सीटों पे चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, डिक्लेयर किया जा चुका है। उसमें 9 में लेबर आगे है और 2 में कंजर्वेटिव पार्टी। तो रुझान इस वक्त लेबर पार्टी के फेवर में नजर आता है, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके हिसाब से ही ये नतीजे आ रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि पिछले 2 इलेक्शन में अगर सही हुए थे तो इस बार भी जो एग्जिट पोल के इशारे हैं, जो सजेशन है, वो सही निकलेंगे।
जी, और आप कुछ दिनों से वहाँ लंदन में मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल में जिस तरह के लेबर पार्टी के एक तरह से वाशआउट दिखाया जा रहा, क्या इतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद आपको भी थी?
मैं सही कहूँ तो नहीं, क्योंकि जब मैं ब्रैडफर्ड, लीड्स और मैनचेस्टर वगैरह में घूम रहा था, वो नॉर्थ का एरिया है, वहां पर जब जो लोग भी हमें मिले सब ने कहा कि वो लेबर को वोट देना चाहते हैं, लेबर के पुराने वो वोटर हैं, और हमें ऐसा लगा कि ये बिल्कुल कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पे वजूद इनका तो है लेकिन इलेक्शन जीतने की स्थिति में वो लोग नहीं है। वहाँ वो सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वर्किंग क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो लेबर उनके दरमियान काफी मकबूल पार्टी है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन 191 की जो प्रेडिक्शन है वो भी बहुत बुरा नहीं है। ये बात जरूर है कि 2017 के मुकाबले में, जब उन्हें 262 सीटें मिली थी, उसके मुकाबले में काफी कम है, और इसकी वजह से, इसकी जो खास वजह मुझे नजर आती है वो ये कि कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल सिंगल पॉइंट जो ब्रेग्जिट के ऊपर इन्होंने ये चुनाव लड़ा और कैंपेनिंग की, जबकि लेबर पार्टी का फोकस ब्रेग्जिट के अलावा जो हेल्थ सर्विसेज है और यहाँ की जो इकोनॉमी बिगड़ी हुई है उसको, जो अभी तक जो चीजों पर खर्च नहीं कर रहे थे, नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे, इन सब पे इनका जोर ज्यादा था। इनको उम्मीद थी कि शायद वहाँ के यहाँ के वोटर से कबूल करेंगे, लेकिन अब तक के जो रुझान है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा।
बहुत शुक्रिया जुबैर आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए। और अब बात नागरिकता संशोधन बिल की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, यानी अब इस बिल ने कानूनी शक्ल इख्तियार कर लिया है। उधर पूर्वोत्तर और खासकर असम में बिल के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीधे चलते हैं गुवाहाटी, जहां मौजूद हैं रवि प्रकाश। रवि, इस वक्त वहाँ पर क्या मौजूद हैं? पिछले बार, माफ़ करिएगा, लगता है कि रवि प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे जो तकनीकी स्टाफ हैं वो दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल रात इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है, यानी अब ये बिल जो है वो कानून बन चुका है, लेकिन पूर्वोत्तर और ख़ास करके असम में बिल के खिलाफ लोगों का गुस्सा अभी भी जारी है। कल गुवाहाटी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई थी जिसमें 2 लोग मारे गए थे। और हमें लगता है कि रवि प्रकाश से हमारा संपर्क जुड़ गया। रवि, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हाँ सर, आ रही है।
जी, तो रवि बताएं कि अभी इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, और एक खबर जो आपको मैंने दे दी कि राष्ट्रपति ने उसको अपनी मंजूरी दे दी है, अब यह बिल बाज़ाब्ता कानून बन चुका है।
देखिए, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने तय किया कि आज सुबह 7 बजे से, मतलब उससे थोड़ी देर के बाद, वे चांदमारी में भूख हड़ताल करेंगे जिसमें कई हजार लोग शामिल होंगे, ऐसा उनका दावा है। रात को एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि कृषक मुक्ति संग्राम समिति एक है और बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं असम के, अखिल गोगोई, उनको पुलिस ने जोरहाट में गिरफ्तार कर लिया। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और भूख हड़ताल अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इंटरनेट सेवाएं जो थी वो उस पर जो प्रतिबंध है वो बढ़ा दिया गया है 2 और 3 के लिए। स्कूलें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो डिब्रूगढ़ इलाका है, वहाँ डिब्रूगढ़ में एक असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस टर्मिनल था, उसमें कल शाम आग लगा दी गई। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार हटा दिए गए, वहाँ मुन्ना गुप्ता नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो मुकेश अग्रवाल है उन्हें भी हटा दिया गया है। एसपी डिब्रूगढ़ गौतम बुड़ा को भी हटा दिया गया है। 2 लोगों की कल मौत हो गई थी फायरिंग में, और एक जतिन बोरा है जो बड़े असमिया कलाकार है, असमिया सिनेमा के, और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर दिया है। तो ये कुछ ताजा घटनाएं हैं जो रात भर में हुई हैं। ये सूचना मिल रही है कि कल रात को जब लोगों को यह पता चला कि फायरिंग में 2 लोग मारे गए हैं, उसके बाद कुछ लोगों ने दीसपुर में, जहां पर सेक्रेटेरिएट है स्टेट का, जनता भवन कहते हैं उसको, उसके बाहर प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया, वो कुछ दूर पहले तक उन्हें रोक दिया गया। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं।
जी,
कल मैंने जी
रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी छात्र इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और अब इससे जुड़ी एक और खबर, बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्री मोमिन 12 से 14 दिसंबर तक अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आने वाले थे। बांग्लादेश ने यात्रा रद्द करने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसका संबंध नागरिकता संशोधन विधेयक से है। बीबीसी संवाददाता अभिमन्यु कुमार साह ने बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजनयिक रही वीना सिकरी से बात की और पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
उनकी विदेश मंत्री आ रहे थे और वो एक बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे थे, उनका एक मल्टीलैटरल विजिट था। इंडियन ओशन डायलॉग कल से भारत दिल्ली में शुरू है और फोकस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे है, तो उस लिहाज सिलसिले में वो आ रहे थे। और उन्होंने समझाया है कि वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि बांग्लादेश में कुछ इंटरनल, जैसे उनके विक्ट्री डे के सेलिब्रेशन हो रहे हैं और इंटेलेक्चुअल डे के सेलिब्रेशन हो रहे हैं, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं है और उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी बांग्लादेश में नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी लिंक करना ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जरूर ये बात सही है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था कि जो हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था अबाउट सिचुएशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, तो उन्होंने कहा था इसके बारे में, और मैं इसके बारे में ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हमारे गृह मंत्री का जो बयान था पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को रेफर किया था जो 2001-2006 के दौरान हुआ था, और उस समय में वो बेगम खालिदा जिया की सरकार थी, और हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि प्रेजेंट बांग्लादेश की सरकार में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और उन्होंने खास कहा था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कि उनके समय में 1975 तक बांग्लादेश में बिल्कुल ऐसी कोई चीज कभी हुई नहीं थी।
क्या सीएबी का जो मामला है वो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो क्या इसे राजनीतिक
इस इसमें ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बिल्कुल स्पष्ट किया था कि इसमें जो आज की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार है, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, बिल्कुल नहीं। और ना अवामी लीग की सरकार जब भी हुई है इसमें बारे में उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। स्पष्ट 2001-2006 के दौरान जो हुआ था उसके बारे में किया कहा था, और उसके बारे में हमारे मीडिया में, भारत के मीडिया में, बांग्लादेश के मीडिया में बहुत ही ज्यादा छपा था उस वक्त में जब ये हुआ था।
तो क्या सीएबी क्या दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते को प्रभावित करेगा?
मेरा ख्याल तो नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात है तो जरूर भारत और बांग्लादेश के बीच हमारी वार्तालाप होती रहती है और होनी भी चाहिए, ज्यादा भी होनी चाहिए, ताकि हम ये स्पष्ट कर सकें कि जो ये सीएबी है ये बांग्लादेश के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हमारे जो बड़े अच्छे संबंध हैं बांग्लादेश के साथ, और संबंध पिछले 5-6 सालों में बहुत ही बढ़ गए हैं और बहुत ही आगे बिल्कुल बेस्ट एवर कह सकते हैं, कभी ऐसे संबंध इतने अच्छे नहीं हुए हैं। और बिल्कुल ये हमारी सरकार नहीं चाहती कि इसमें कुछ भी बाधा आए, तो बिल्कुल ये एक इंटरनल मैटर है, एक सेटलमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग इशू जो बहुत दशकों से चले आ रहा है उसके बारे में ये सीएबी है, और इससे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पे कोई असर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में जरूर डिस्कशंस, क्लैरिफिकेशंस, फ्रेंडशिप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए।
ये थी भारत की पूर्व राजनयिक वीना सीकरी। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है, बताएं सृष्टि।
जी इकबाल, अगर हम बात करें तो एक बार फिर जो नागरिकता संशोधन विधेयक है इस बारे में सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है, और इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि किस तरह से देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, और इस बिल का राज्यसभा में पास होने के बाद से ही पूर्वोत्तर में इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। और साथ ही में अगर इसकी इस खबर को लेकर जो नवभारत टाइम्स है उसने हेडिंग लगाई है, असम विषम, पूर्वोत्तर में नागरिकता बिल का विरोध तेज, और जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो भी बता रही हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। दैनिक भास्कर भी लिखता है कि कर्फ्यू तोड़कर गुवाहाटी में सड़कों पर हजारों लोग, पुलिस फायरिंग में 3 की मौत। और हिंदुस्तान अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो ये नागरिकता संशोधन विधेयक है उसे लेके खबर लिखी है कि इस बिल पर जो कानूनी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गुरुवार को इस विधेयक को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, और लोकसभा में इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि असम को कश्मीर बनाया जा रहा है, और हंगामा बढ़ने पर कांग्रेस और द्रमुक ने जो उसके जो सदस्य हैं उन्होंने वॉकआउट भी किया। साथ ही में एक और खबर जिसको जगह दी गई है वो है अयोध्या मामले में जो सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं थी वो खारिज हो गई हैं, और कोर्ट ने कहा है कि जो भी कागज़ दिए गए थे उनको ध्यानपूर्वक पढ़ा गया और कोई भी आधार नहीं दिखता है इस पे पुनर्विचार करने का। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है कि जो अनाज मंडी जिसने दिल्ली में हाल ही में आग लगी थी और 43 लोगों की जान चली गई थी उसको लेकर के एक PIL दाखिल हुई है, जिस PIL में ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे जो बाल मजदूर हैं उनसे काम कराया जा रहा था, और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी को इस पे जो नोटिस जारी किया है। और इसी के साथ निर्भया मामले की भी जो खबर है फांसी से जुड़ी हुई उसको भी सभी अखबारों ने अपने पन्नों पे जगह दी है।
बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका इस जानकारी के लिए। और अब एक खास रिपोर्ट। सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन बंद करने का फैसला किया है। ये 25 जनवरी 2020 तक वैध था लेकिन अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों का मनोनयन होता है, वहीं कई विधानसभाओं में भी ये प्रावधान है कि वहाँ पर एंग्लो इंडियन सदस्यों को भेजा जाता है। इस बात को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि आज देश में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन ही बचे हुए हैं। इस विधेयक को लेकर एंग्लो इंडियन समुदाय की क्या चिंताएं हैं, यही जानने के लिए BBC संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बेरी ओ ब्राउन से बात की।
हमारा जो नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हटा दो, एक नंबर दो, हम कोई बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है। हम माने हमारे लिए जो रिजर्वेशन है वो बैकवर्डनेस के लिए नहीं है, वो हमारी जो संख्या है चाहे वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख किसी को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कितना है, कुछ लाख है, लेकिन हम कोई भी राज्य में मेजॉरिटी में नहीं है। हम कोई भी पकड़ लीजिए कि कहीं 20,000 है, कभी 2,000, कहीं 2,000 है, कहीं 500 है, कहीं 50,000 है, तो इस संख्या का स्प्रेड जो है 20-22 राज्य में, तो ये कभी हम लोग कभी अपने आप अपना प्रतिनिधि हम कभी इलेक्शन में उनको छुपा नहीं सकेंगे बोल के। और हमारी जो भाषा है, हम इंडियन है लेकिन हम भारतीय है, लेकिन हमारी भाषा है अंग्रेजी, क्रिश्चियन हमारा रिलीजन है, मेरा जो लाइफस्टाइल है, मैं जो खाता हूँ पीता हूँ, मैं जो करता हूँ, मेरा जो लाइफस्टाइल है, संविधान ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है। और ये जो लोकसभा के दो रिप्रेजेंटेटिव्स और राज्य में 13-14 राज्य में अपना रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरा कोई प्रॉब्लम होने से मैं उनके पास जा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग का यूनिक एक कम्युनिटी है। इसीलिए इस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को ये रेजोल्यूशन चाहिए।
रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा कि 296 ही सिर्फ एंग्लो इंडियन सदस्य समुदाय के लोग बचे हुए हैं, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे?
ये जो सरकार बोल रही है कि 296 एंग्लो इंडियन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, एक्चुअली 2011 के सेंसस में और 1999 के सेंसस में, उसके बाद उसके पहले वाला दो और उसके पहले वाला, वहां पे कोई कॉलम नहीं है जहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कम्युनिटी एंग्लो इंडियन है कि नहीं। पहले था 40-50 साल पहले, तो शायद क्या हुआ है 296 क्रिश्चियन बाई मिस्टेक वहां पे एंग्लो इंडियन एज रिलीजन लिख दिया होगा, क्योंकि मैं एक प्रूफ दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और झारखंड में, चार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 बीजेपी रूल स्टेट्स, अभी एक चला गया, लेकिन ये 4 स्टेट्स में अगले लास्ट 2 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में इन लोगों ने, इनकी सरकार ने, स्टेट सरकार ने एक एंग्लो इंडियन नॉमिनी को एमएलए बनाया, लेकिन ये 296 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एंग्लो इंडियन है ही नहीं, ये 4 राज्य में 0-0-0-0, तो आप किसको बनाएं? हाउ हैव यू डन दिस? सो ये एकदम बकवास है, ये बहुत ही मिसलीडिंग है, ये बहुत ही गलत है। और हमारी ये विश्वास है कि ये सरकार विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन और रिकंसिडर करेगी। हम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग बोल नहीं रहे कि अपने अपना रेजोल्यूशन दो, हम बोल रहे हैं कि आप डेटा निकालो, आप हमसे बात करो, आप घूमो, हर सब देश में एक सेंसस कर ले लो एंग्लो इंडियन का, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ आप कोई कारण दो। लेकिन आप जस्ट 296 बोल के हम मैंने ये हटा दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। वी आर फीलिंग वेरी वेरी बिट्रेड। हमारे जो मेन टॉलेस्ट लीडर थे फ्रैंक एंथनी, जब ब्रिटिश लोग जा रहे थे तो उन्होंने उसके बाद एक किताब लिखी थी, उनका नाम था ब्रिटेन्स बिट्रेल इन इंडिया। दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर ऑडियंस, लिसन टू, ब्रिटेन्स बिट्रेल इन इंडिया, फ्रैंक एंथनी ने लिखा था कि ये जो ब्रिटिश जा रहे हैं, ये हैव बीन, दे हैव बीन अनफेयर टू अस, दे हैव बीन अनजस्ट टू अस, और ये छोड़ के जा रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूँ कि अभी एंग्लो इंडियन लोग फील कर रहे हैं कि ये सेकेंड बिट्रेल हो रहा है, लेकिन फर्क क्या कहाँ है, अंतर कहाँ है कि वो बाहर के आदमी थे ब्रिटिश, और ये अपनी सरकार, अपने जो आदमी है, अपने जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, अपनी जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है, ये लोग बिट्रे कर रहे हैं।
तो ये थे ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बेरी ओ ब्रायन। और अब पाकिस्तान से एक खास रिपोर्ट। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम आते ही दिमाग में मुगलिया सल्तनत, दीन इलाही, राजपूत जोधा भाई के नाम याद आ जाते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि अकबर बादशाह का जन्म कहाँ हुआ, तो कई लोग गूगल पर इसका जवाब ढूंढेंगे। उमरकोट अकबर का जन्म स्थान है। उमरकोट किन वजहों से और क्यों खास है, सुनिए बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल की इस खास रिपोर्ट में।
ओ कोटन में किया गुजारा,
उमर मारवी की लोक दास्तान ने उमरकोट की ही दीवारों में जन्म लिया था। उस वक्त के हुक्मरान उमर सुगरो ने मारवी को अगवा करके यहाँ कैद रखा था। वो मारवी से शादी का ख्वाहिशमंद था। जब मारवी उसकी धमकियों और लालच में ना आई तो उमर उसे बहन बनाकर दोबारा थर छोड़ आया। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपनी शायरी में मारवी को बुलवतनी की मिसाल बना दिया।
अल्लाह कट बंधाई बंधाई कट
शेर शाह सूरी से शिकस्त के बाद हुमायूं और उनकी बेगम हमीदा बानू ने उमरकोट में पनाह हासिल की थी। शहर से करीबी शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जाय पैदाइश वाक्य है। रिटायर्ड प्रोफेसर याकूब आरिसर कहते हैं कि उमरकोट किले की दिफाई हैसियत भी रही है।
ये फोर्ट जो है या ये जो शहर है तो ये गुजरात का और राजस्थान का गेटवे रहा है। सिंध से गुजरात, राजस्थान, जोधपुर स्टेट और जैसलमेर स्टेट का ये संगम रहा है और खुसूसन सिंध की जो करीबी रियासतें हैं उनके दिफा के लिए इस किले की एक अपनी अहमियत रही है। तो यहाँ जो बैरूनी हमलावर होते थे तो उनको यहाँ आने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बड़ी बड़ी नहरें होती थी।
उमरकोट का शहर किले से मंसूब है। यह शहर कराची से तकरीबन 325 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। उमरकोट का किला मुख्तलिफ हुक्मरानों के उरूज व जवाल का गवाह रहा। यह किला मुस्ततील नमूने पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 946 फीट और चौड़ाई 785 फीट है। उमरकोट किले में एक म्यूजियम भी मौजूद है। इसके क्यूरेटर गुलाम हुसैन बुर्दी के मुताबिक मुगलिया दौर से वाबस्ता कई नादर व नायाब अशिया नुमाइश के लिए दस्तयाब है।
हमारा ये म्यूजियम 2006 में डिस्प्ले हुआ है। इससे पहले 1968 में एक सिंगल गैलरी थी जो इसके बराबर में, उसमें सिर्फ मुगलिया दौर के एंटीक्विटीज़ या कुछ सामान पड़ा हुआ था। जब ये नया म्यूज़ियम बना तो इसमें गैलरियाँ बढ़ा दी गई और एंटीक्विटीज़ जो वो हमें वहाँ नगर पार्कर से यानी कि वीरावा टेंपल के करीब जो 2006 में मेटल रोड की खुदाई हो रही थी उसी दौरान काफ़ी चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं हमारे यहाँ म्यूज़ियम में डिस्प्ले की हुई हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मुगलिया दौर के आर्मर्स हैं, क्वाइंस हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पोर्ट्रेट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
उमरकोट में मजहबी हमआहंगी वाजे तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ मौजूद शिव मंदिर का शुमार कदीम मंदिरों में होता है। इसके मुंतजिम स्वरूप चंद हैं।
ये मेरा अपना बहुत पुराना कदीम मंदिर है। इसको मेला होता है अपना फरवरी की लास्ट में और 3 दिन चलता है। उसमें 1,25,00,000 आदमी आते हैं, 1.5 लाख आदमी आते हैं। इसमें अपने जो शहर के पूरे आदमी आते हैं, हमारे जो मुसलमान भाई है वो भी आते हैं और शहर के वो भी हमारे साथ 3 दिन साथ होते हैं। कोई काम वाले होते हैं, कोई इजारा ऐसे अपने देखने वाले होते हैं, को आते मना सब एक होते हैं, एक बात होती है।
सराय खवातीन में चूड़े पहनने का रवाज पहले आम था, अब सिर्फ हिंदू खवातीन पहनती हैं। उमरकोट में कई चूड़े साज थे, अब ये दुकानें चंद रह गई हैं। उमरकोट चांदी के जेवरात का भी बड़ा मरकज है। हिंदू कबाइल जहेज में अपनी लड़कियों को चांदी के जेवरात देते हैं। हर कबीले का डिजाइन अलग है। उमरकोट में सियाहत के लिए आने वाले लोगों के लिए ये तोहफा महंगा जरूर है लेकिन अनमोल और यादगार भी है। रियासेल, बीबीसी उमरकोट।
और अब चलने का वक्त आ गया है, लेकिन चलने से पहले सुन लेते हैं एक बार फिर प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के आम चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई दिख रही है। म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों से अपने देश की सेना के खिलाफ नरसंहार के आरोपों को खारिज करने की अपील की है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पर 2 साल पहले रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या, बलात्कार और निर्वासन के समय पर चुप रहने व कोई कदम न उठाने के आरोप हैं। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद अब नागरिक संशोधन बिल कानून बन गया है। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस विधेयक पर अपनी मंजूरी दे दी है। न्यूजीलैंड की सेना सोमवार को ज्वालामुखी विस्फोट में मारे गए 8 लोगों के शव को वापस लाने के लिए एक जोखिम भरा अभियान चला रही है। व्हाइट आइलैंड से सेना ने 6 शवों को एयरलिफ्ट किया है। चिली के सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सोमवार हुई सैन्य विमान दुर्घटना में किसी के भी जीवित बच पाने की संभावना नहीं है। अंटार्कटिक अड्डे के रास्ते जा रहे C-130 में 38 लोग सवार थे। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली तिलक भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। कार्यक्रम होगा दिन भर, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए अगर आप चाहें तो 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।